नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। आगामी मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन व पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने राज्य स्तरीय तैयारियों की समीक्षा की और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक मिलन कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और दूरस्थ क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सेना के शौर्य के कारण आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। उन्होंने सेना के साहस और शौर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण दुश्मन कभी भी भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों के घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। भारत की सेना आज आत्मनिर्भर सेना हो गई है। बड़े बड़े जो रक्षा के उपकरण है आज भारत बना रहा है, उसकी शक्ति को भी पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। आज रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भी भारत दुनिया की टॉप सूची के देशों में शामिल हो गया।
केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
आगामी मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन व पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने आज देहरादून में राज्य स्तरीय तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री कौशिक ने कहा कि सभी रेखा विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF और अन्य एजेंसियां समन्वय के साथ 24 घंटे अलर्ट मोड में कार्य करें। उन्होंने प्रदेश भर में नालों और नालियों की सफाई के लिए विशेष अभियान संचालित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून शुरू होने से कम दो बार इनकी सफाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए, ताकि जल भराव और बाढ़ जैसी स्थितियों को रोका जा सके। श्री कौशिक ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार टीमों की पूर्व तैनाती की जाए, ताकि किसी भी स्थिति में राहत व बचाव कार्यों में देरी ना हो।
हमने आपदा की दृष्टि से सभी पहलुओं पर विस्तार से यहाँ चर्चा की है। सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश यहाँ से दिए गए हैं कि आप आपदा की दृष्टि से अपने जिले में अभी मानसून सीजन प्रारंभ होने से पहले जो वहाँ के जिले के अंतर्गत ऐसे नाले हैं, नालियां हैं, खाले हैं, उन सबको तत्काल सफाई व्यवस्था उनकी सुनिश्चित करें और प्रभावी ढंग से करें। और सभी अधिकारियों को ये आवश्यक निर्देश दिए गए हैं विभाग वाइज कि आप आपदा की दृष्टि से आने वाले समय में बहुत इस मानसून सीजन में प्रभावी ढंग से आप तैयारी करिए, कहीं कोई इस प्रकार की घटना होने की स्थिति में तत्काल वहां रिलीफ दिया जा सके।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज लोक भवन में आयोजित लोक मिलन कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और दूरस्थ क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून जिलों से आए लगभग 20 व्यक्तियों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और सुझाव राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए। राज्यपाल ने सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार और निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने शिकायत निवारण अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी मामलों को संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रेषित कर शीघ्र समाधान की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राज्यपाल ने कहा कि लोक भवन में समय समय पर आयोजित होने वाले लोक मिलन कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं, विशेषकर पूर्व सैनिकों को सीधे सुनना तथा उनके समाधान के लिए संवेदनशील और प्रभावी पहल करना है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों ने सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई। हरिद्वार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 66 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 30 का मौके पर निराकरण किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों द्वारा जो भी समस्या दर्ज कराई जा रही है उनका प्राथमिकता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।
अभी फोकस यही है कि जो भी शिकायतकर्ता हमारे पास जनसुनवाई में एक बार आते हैं उनको पुनः न आना पड़े और साथ ही शिकायतकर्ताओं को त्वरित निस्तारण हो, इसके लिए आज कई ऐसी शिकायतें थी जिसमें साथ ही में अधिकारियों को भेजा गया शिकायतकर्ता के साथ मौके पर निरीक्षण करने के लिए और अगर कोई समस्या उसका तत्काल निराकरण हो सके। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन में जो 10 शिकायतें हैं उसका भी रिव्यू किया गया। उन शिकायतों में जिनमें 36 दिन से अधिक शिकायतें जिन अधिकारियों के समीप उनके पोर्टल पर दर्ज हैं उनको शोकॉज नोटिस भी दिया गया।
उधर बागेश्वर में आयोजित जनता दरबार में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी RC तिवारी ने अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
कुछ शिकायतें जो भूमि संबंधी थी वो SDM को निर्देशित किया गया है। कुछ इसमें बिजली के बिल के और बीच में आंधी तूफान की वजह से बिजली लाइन डिस्टर्ब होने की थी, उस पर भी बात हुई है। एक दो प्रकरण लोक निर्माण विभाग के भी थे, उनको निस्तारित करने के लिए कहा गया है। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो बजट से संबंधित होती हैं, तो हमारे विभागों की जिम्मेदारी है कि वो कंसर्न शिकायतकर्ता को ये बता दें भाई इसमें इतने बजट की आवश्यकता है और इतना समय इसमें बजट स्वीकृत कराने में लगेगा। उसी की वजह से वो कन्फ्यूजन की वजह से शिकायतकर्ता दोबारा आता है, तो इसको आगे देखा जाएगा, इसका समीक्षा जो है हर सप्ताह की जाएगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। आगामी मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन व पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने राज्य स्तरीय तैयारियों की समीक्षा की और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक मिलन कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और दूरस्थ क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।